ओम शांति। राजयोग शिविर का आज आप सभी का चौथा सत्र है। आज का विषय है कर्मों की गुह्य गति। अभी हम सब गीत भी सुन रहे थे कि हे मानव, तू अपने कर्म की पहचान कर ले, क्योंकि आज दिन तक हम सभी ये सोचते हैं कि जो भी हम कोई कर्म करते हैं, इस कर्म का फल हमें अन्य योनि में जाकर के भोगना पड़ेगा। वास्तव में देखा जाए, जो हम कर्म करते हैं मनुष्य योनि में करते हैं, तो उस कर्म का फल भी हमें मनुष्य योनि में ही भोगना पड़ेगा। तो ये हमारी समझ जो है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। केवल हम कह रहे हैं, अभी हमने ये शरीर छोड़ा, पता नहीं हमें कौन सा जन्म मिलेगा। इससे सिद्ध होता है कि हमें अपने कर्मों पर भी विश्वास नहीं है। यदि हम मनुष्य आत्माएं बुद्धिजीवी प्राणी हैं, तो हमारा जन्म क्या कुत्ते बिल्ली का होगा? विचार करने की बात है। और कई बार हम लोग टीवी में ऐसे कुछ मिसाल सुनते हैं, या पेपर में पढ़ते हैं, या कई बार अपने घर में भी हम ये बात सुनते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके शरीर पर कोई निशान होता है, या कई बार देखा जाता है कि बच्चा जन्म लेता है, तंदुरुस्त होते हुए भी बच्चा रोता रहता है, पता नहीं इस बच्चे को क्या हुआ होगा। तो कभी कभी हम उसकी जन्मपत्री देख लेते हैं, तो पता चलता है कि किसी पूर्वज आत्मा ने हमारे घर में जन्म लिया है। कोई कहते हमारे पिताजी आए, कोई कहते हमारी माँ की आत्मा है। आपने ये बात कैसे मान ली? और इतना ही नहीं, जब वो बच्चा बड़ा होता है तभी भी हम देखते हैं उसका उठना, बैठना, बोलना, चलना, वहां भी इस प्रकार होता है कि हम कहते बराबर है, ये तो मेरे पिताजी की ही आत्मा है। अर्थात पुनर्जन्म को हम मानते हैं, और ये बात हम सत्य और स्पष्ट रूप से अपने आप में भी अनुभव करते हैं कि सचमुच ये हमारी पिताजी की आत्मा या माँ की आत्मा है। इसी प्रकार कहीं बच्चे अपना पुनर्जन्म के बारे में बताते हैं कि हमने यहाँ यहाँ जन्म लिया, इस तरह से वो अपनी कहानी सुना देते हैं। एक छोटी सी 6 साल की बेबी थी, उत्तर प्रदेश के एक शहर की बात थी, जहाँ पर उस बच्ची का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पर उसका पहला जन्म जो था वो मेहतर का था। तो उस बच्ची ने जैसे ही ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, तो उसको अपने पिछले जन्म की कुछ स्मृतियां आने लगी, और वो बेबी कहने लगी, आप लोग मुझे ठीक से खाना नहीं देते हैं, क्योंकि उसे नॉनवेज खाने का संस्कार था। और वो कहने लगी, ये मेरा घर नहीं है, मेरा पति यहाँ नहीं है। अब 6 साल की बच्ची इस तरह की बात करे तो सबको आश्चर्य होने लगा, और उस बच्ची को डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने कहा कि ये जो भी बातें कह रही है, मनोचिकित्सक डॉक्टर थे, उस बातों को आप नोट कीजिए और फिर हम आगे देखते हैं क्या होगा। तो देखा गया उस बच्ची ने कुछ ऐसी बातें कही, और उस आधार से उस बच्ची को उस शहर में ले जाया गया। और जब वो बच्ची शहर में गई तो वो इस तरह से कहते ट्रेन से उतरकर चलने लगी जैसे कहीं बार वो उस शहर में गई होगी, परंतु अब तो वो पहली बार गई थी। और वो अपने घर में पहुंची कि जहां पर उसका घर था, और वहां जाकर के वो अपने बच्चों के बारे में, अपने पति के बारे में पूछताछ कर रही थी। तब पता चला कि यह बच्ची लक्ष्मी नामक थी, और उसने अब ये पुनर्जन्म लिया है। तो इस प्रकार की कहानियां नहीं परंतु सत्य बातें आप सभी ने भी सुनी होगी। अगर किसी को मनुष्य को मनुष्य का जन्म न मिलता तो कोई एक व्यक्ति तो ऐसा होता कि जो कहता था मैं पिछले जन्म में कोई पशु या पंछी था। लेकिन नहीं, मनुष्य आत्मा को मनुष्य का ही जन्म मिलता है अपने किए हुए कर्मों के आधार पर। इसीलिए ये नई और सत्य बात हम सभी के बुद्धि में रहे, क्योंकि आज तक हमने यही सुना हुआ है अब ये एक ही जन्म मनुष्य का मिला, पता नहीं आगे का जन्म क्या होगा। हम इस बात को भी अगर मान लेते हैं कि सचमुच यह जन्म हमें मनुष्य का एक ही मिलता है, तो इस जन्म को हम कैसे व्यतीत करें? किस तरह से इस अमूल्य जन्म को हमने इसका सार्थक करना चाहिए या कल्याण करना चाहिए? अगर इस बात को भी हम मान ले कि हाँ, यह एक ही मनुष्य का जन्म मिलता है, तो हमारा एक एक सेकंड बहुत वैल्यूएबल है। एक एक सेकंड हम इस जीवन को हीरे के जैसा व्यतीत करते थे, पर आज हम देखते हैं मनुष्य अपने जीवन में किस तरह से अपना समय, अपने कर्म, अपने संबंध कैसे व्यतीत कर रहा है। इसीलिए यह सिद्ध है कि मनुष्य के बुद्धि में ये बात ही नहीं है कि मनुष्य योनि अमूल्य योनि है। योनियां तो कहीं सारी है, जैसे 84 लाख योनियां कहीं जाती है, उसमें कुत्ता भी आ जाता, बिल्ली भी आ जाती है, तो शेर भी आ जाता है, मोर भी आ जाता है, गौ भी आ जाएगी तो भैंस भी आ जाती। ऐसे अनेक प्रकार की योनियां है, उसी में एक योनि मनुष्य की है। और मनुष्य आत्मा जब शरीर छोड़ता है तो वो कहाँ जाता है? एक तो ये मान्यता है कि पता नहीं कौन सा जन्म मिलेगा। अब दूसरी तरफ हम ये बात कहते हैं कि कोई भी गृहस्थी जब शरीर छोड़ता है तो कहते हैं फलाना व्यक्ति स्वर्ग पधारा। अब स्वर्ग है कहाँ? जो हम कह देते हैं फलाना तो स्वर्गवासी हो गया, अच्छा अगर वो स्वर्गवासी हुआ तो हम पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य है हम कहाँ है, बताएगा कोई? जिसने शरीर छोड़ा वो तो स्वर्गवासी हो गया, अब हम सृष्टि पर है तो हम कहाँ है? नरक में है। यदि हमें कोई सीधा कह दे भाई साहब या बहन जी आप नरकवासी है, हमें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, कहेंगे आप कौन होते हमें नरकवासी कहलाने वाले, और हमें पता ही नहीं है स्वर्ग और नर्क की डेफिनेशन क्या होती। इसीलिए हम कह देते हैं फलाने ने शरीर छोड़ा वो स्वर्गवासी हुआ। वास्तव में देखा जाए स्वर्ग और नर्क इसी भूतल पर होते हैं। स्वर्ग ऊपर नहीं है, ऊपर हम आत्माओं के रहने का स्थान ब्रह्म महतत्व शांति धाम परम धाम है, जहां की हम आत्माएं निवास करने वाली है। फिर हम आत्माएं इस सृष्टि पर जब आती है तो इस सृष्टि में सतयुग कहलाया जाता है। जिस तरह एक नाटक होता है उसके 4 भाग होते हैं, इसी प्रकार इस सृष्टि रूपी नाटक में भी 4 अंक कहलाए जाते हैं। पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेतायुग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है कलयुग। पर इसमें एक छोटा सा 5वां संगम युग भी दिखाया है, जो कलयुग के अंत का समय और सतयुग के आरंभ का समय, जिसे पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। तो हम सब आत्माएं इस सृष्टि चक्र में पार बजाती है। तो जब इस भारत भूमि में सतयुग था, जहां पर हम ही मनुष्य आत्माएं देवी देवता के स्वरूप में थे, जहां तन का, मन का, धन का, संबंधों का, और प्रकृति का सुख था, उसे कहां गया स्वर्ग। अब नर्क किसे कहा जाता? जहां व्यक्ति अर्थात तन, मन, धन, जन और प्रकृति पांचों ही बातों से कहीं न कहीं मनुष्य दुखी जरूर है। एक बार एक बुजुर्ग भाई साहब हमसे मिले और कहने लगे, बहन जी हमें तो अपने जीवन में बहुत सुख है, इतना मेरे जैसा संसार में सुखी कोई नहीं है, मैं तो यहां ही जैसे स्वर्ग में बैठा हूं। हमने कहा, बड़ी अच्छी बात है, आप यहां ही स्वर्गवासी है, कितनी सुंदर बात है, पर क्या करे। हमने कहा, क्या करे अर्थात स्वर्ग में क्यों क्या नहीं होता, लेकिन आपको एक बात बताती है, मेरा पड़ोसी है ना, वो मुझे बहुत दुख देता है। तो इससे सिद्ध क्या हुआ? स्वर्ग नहीं हुआ, क्योंकि स्वर्ग में दुख शब्द का नाम निशान नहीं होता। अब पड़ोसी के कारण भी अगर आप दुखी है तो संबंध कहे या जन कहे, जन का सुख तो नहीं हुआ। आश्रम में आए हुए थे तो उन्हें प्लेट में नाश्ता दिया गया, तब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि बहन जी इसमें से जो गुलाब जामुन है वो आप निकाल दीजिए। हमने कहा, भाई साहब क्यों? तो कहा, नहीं मुझे डायबिटीज है। तो क्या स्वर्ग में देवताओं को डायबिटीज होगा? दुख होगा, तन का भी वहां सुख है। तो यहां देखा जाता है व्यक्ति को तन का भी दुख है, इसीलिए किसी न किसी प्रकार से मनुष्य आत्मा इस कलयुगी संसार में दुखी है। चाहे संबंध है, किसी का बेटा अच्छा नहीं है, किसी का अपने भाई के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, आपस में प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हम कैसे कह सकते हैं ये कलयुगी संसार सुखमय संसार है या इसे हम स्वर्ग कहे। इसीलिए इस दुनिया को केवल नरक ही नहीं परंतु रव रव नरक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हम सभी मनुष्य आत्माएं दुखी है, अशांत है और पतित बने हुए है। पतित शब्द का अर्थ होता है जहां मानव जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों की प्रवेशता है। आज कोई भी व्यक्ति इन विकारों से अछूत नहीं है। आज कोई ये नहीं कह सकता है कि बहन जी मुझे लोभ नहीं है, बहन जी मेरे में क्रोध नहीं है, मेरे में मोह नहीं है। इस प्रकार हम दावे के साथ अपने आप के लिए भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस संसार में रावण का राज्य चल रहा है। इसीलिए रावण कहता है, ना मेरा कोई ताज है, ना मेरा कोई तख्त है, फिर भी इस दुनिया में एक एक व्यक्ति के दिल पर रावण का राज्य है। इसीलिए परमात्मा पिता कहते हैं कि ये जो कलयुगी मनुष्य दुखी है, ये भी कर्मों का ही तो फल है। और सतयुग में मनुष्य आत्मा दुख सुखी थे, वे भी कर्मों का ही फल है। इसीलिए जैसा हम बीज बोते हैं, वैसा ही फल मिलता है। आम का बीज बोने के बाद हम केला उस पेड़ को लगे ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। आम का बीज बोने के बाद वहां पर आम ही मिलेगा, चाहे पेड़ का सैपलिंग क्यों न किया जाए, कलम क्यों न लगाया जाए, डालियों पर दो फल मिलेंगे, लेकिन बीज एक डालने पर जैसा बीज होगा वैसा ही फल मिलेगा। इसीलिए हम मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में जो कर्म करती है उसका फल हम मनुष्य योनि में कैसे भोगते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं, चोर चोरी करता है तो चोरी के कर्म का फल, अगर हम इस बात को कह रहे हैं कि पता नहीं कौन सा जन्म होगा, तो चोरी के कर्म का फल उस चोर को क्या मिलना चाहिए? बिल्ली का जन्म। क्योंकि बिल्ली में यह संस्कार है, वो छुपा करके दूध पी जाती है तो पता नहीं चलता है। पर वास्तव में देखा जाए, चोरी को चोर के कर्म का फल बिल्ली का जन्म नहीं मिलता। बिल्ली की एक अपनी योनि है। चोर चोरी करता है, वो अपने सुख के लिए दूसरे का सुख छीनता है। इसीलिए क्या होता, वो दूसरों की बदुआ लेता है और वो कभी सुखी नहीं बन सकता है। लेकिन जब उसे जन्म मिलेगा तो मानव जीवन के लिए आवश्यक तीन बातें हैं, अन्न, वस्त्र और रहने का स्थान। अगर इस प्रकार से उस आत्मा के कर्म है तो उसे मिलेगा मनुष्य का जन्म। लेकिन मनुष्य के योनि में आते हुए भी उसे भिखारी का जन्म होगा। इसीलिए कई बार हम लोग देखते हैं कि फुटपाथ पर भिखारी रहे पड़े होते हैं, उन्हें कोई गवर्नमेंट की तरफ से मकान भी बनाकर दिए जाते हैं, खाने के लिए कुछ चीजें भी दी जाती है, वस्त्र भी मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद वो मकान से बाहर आपको फुटपाथ पर ही मिलेंगे। क्यों? यही उनके कर्मों का फल है, जो उन्हें मानव जीवन की सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए जरूरी नहीं है कि उसे चोरी के कर्म का फल कोई उसे अन्य योनि में जाना होगा। कभी कोई किसान होता है, वो अपने बैलों से बहुत बोझा ढोता रहता है या काम करवाता रहता है, तब कहीं लोग कहते हैं, पता नहीं ये कैसे इंसान है, इसमें जरा भी दया भाव नहीं है, कितना अपने बैलों से काम करवाता रहता है, ये अगले जन्म में जब गधा बनेगा या बैल बनेगा तब इसे पता चलेगा। अब वास्तव में उसे बैल या गधा बनने की जरूरत नहीं, मनुष्य के योनि में आते हुए भी वो बैल या गधे जैसे कर्म करते हैं। वास्तव में देखा जाए, आज भी हम गृहस्थी का बोझा कम नहीं ढो रहे हैं। दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसकी रिजल्ट तो हम यही कहते, बहुत भारी हो गए हैं, बहुत टेंशन आ रहा है, तो क्या ये बोझ नहीं है? दूसरी बात कि अगर व्यक्ति बैल का जन्म लेता तो बैल के योनि में उसे जाना पड़े, ये हमारी मान्यता है। मनुष्य के योनि में होते हुए भी व्यक्ति बैल के जैसा कर्म कर रहा है। कई बार हम रास्ते पर देखते हैं, केले की गाड़ी भरी हुई होती है और कच्चा केला है, दो व्यक्ति उस गाड़ी को चला रहे होते हैं, खींच खींच के ले जा रहे होते, तो क्या वो व्यक्ति बैल का काम नहीं कर रहे हैं? कहीं पर यह भी नजारा देखने में आता है कि जिस तरह हम धान खरीद करने जाते हैं, बहुत सारा गेहूं चावल खरीद कर लेते, हमारी गाड़ी की पार्किंग दूर होती है, हम उनको कहते, भाई ये सामान जरा हमारा गाड़ी तक पहुंचा दो। अब वो व्यक्ति 100-100 किलो का बोझ अपने पीठ पर उठाता है और अपनी गाड़ी तक ले चलता है, तो क्या वो मनुष्य होते हुए गधे का कर्म नहीं कर रहा है? बताइए, उससे भी ज्यादा। क्योंकि कहीं बार तो हम सब्जी मार्केट में जाते हैं, सब्जी खरीद लेते हैं और हम कहते हमारे घर तक पहुंचा दो, पर हम तो रहते सेकंड थर्ड फ्लोर, हमारी बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, हम उस व्यक्ति को कह देते, भाई आपको मैं 5 रुपया एक्स्ट्रा दे दूंगी, आप जरा ये ऊपर चढ़ा देना। बैल या गधा तो घर तक लाके छोड़ देगा, ऊपर तक नहीं पहुंचाएगा। अब ये व्यक्ति तो ऊपर तक घर में छोड़ देता है, केवल 5 या 10 रुपया उसे एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो देखिए, शरीर मनुष्य का है और कर्म जो है वो बैल या गधे की तरह है। इसी प्रकार कई बार हम देखते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं वो माँ को बहुत तंग करते हैं, तब माँ कहती है, अरे तुम तो बंदर हो बंदर। अब बच्चा बंदर है क्या? नहीं, लेकिन उसकी चलन इस प्रकार है, जिस तरह बंदर कभी शांत नहीं बैठ सकता, इसी प्रकार वो बच्चा जो है वो यहां से वहां, वहां से वहां उठता बैठता रहता है, खेल कूद करता रहता है और माँ को तंग करता है। इसीलिए जरूरी नहीं है कि मनुष्य योनि में हम बुरे कर्म करें और उस फल की सजा भोगने के लिए हम पशु पंछी की योनि में जाए। हम मनुष्य योनि में ही अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। इसका अगर हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखें तो हॉस्पिटल में जाकर के देखिए, लोग कहते हैं हम बुरे कर्म करेंगे उसका फल भोगना पड़ेगा यमराजपुरी में, लेकिन परमात्मा पिता हमें बताते हैं कहीं बार तो यहां ही कर्मों का फल हम भोग रहे हैं। लोग ऐसे सुना हुआ है कि बताते हैं यमराजपुरी में जाते हैं, धर्मराजपुरी में जाते तब किसी का आरी से पांव काटा जाता है, किसी को तेल की कढ़ाई में उबाला जाता है, इस तरह की बातें सुनी हुई है। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल होगा? हम देख रहे इन आंखों से हॉस्पिटल में हम ट्रीटमेंट करने जाते हैं, पांव को गैंग्रीन हो चुकी है, डॉक्टर कह रहे अब इस पांव को काटना होगा और वो इसी तरह से काटा जाता है, तो देखिए क्या ये कर्मों का फल नहीं है? इसीलिए ये गलत हमारी मान्यता है या समझ है कि मनुष्य को शरीर छोड़ने के बाद अन्य योनि में जाना होगा। तब परमात्मा पिता हमें समझाते हैं कि बच्चे, मनुष्य आत्मा को मनुष्य का ही जन्म मिलता है, अपने किए हुए कर्मों के अनुसार वो सुख या दुख पाता है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, हे अर्जुन, हे उद्धव, कर्मों की गति बड़ी गुह्य है। हम कर्म करते समय सोचते नहीं है इस कर्म का फल क्या होगा, लेकिन कर्म का फल मिलता जरूर है। इसीलिए बताते हैं, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का भोग मिटे ना रे भाई। तभी कहती है, पता नहीं श्री राम ने क्या कर्म किए थे जो उन्हें वनवास में जाना पड़ा। इस तरह की बातें हम सुनते हैं, पर अब आवश्यकता है श्रेष्ठ कर्म करके हमें तो स्वर्ग में सच सच जाना है, स्वर्ग का गेट पास लेना है, क्योंकि परमात्मा पिता हमें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं कि जिस कर्म का फल हम स्वयं ही जान सकते हैं कि मेरा भविष्य का जन्म क्या होगा। इसीलिए हम अपने वर्तमान के आधार से अपने तीन जन्मों को समझ सकते हैं या जान सकते हैं। जिस तरह से आपको ये बात समझाई गई कि तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख और संबंधों का सुख, अगर ये चारों ही प्रकार के सुख मुझे वर्तमान जीवन में है, इससे सिद्ध होता है मेरा जो पास्ट का जन्म है वो बहुत श्रेष्ठ था। और अगर इसमें कुछ कमी है तो जरूर ऐसा कुछ कर्म किया है जिससे मुझे दुख मिल रहा है, चाहे संबंधों के रूप में दुख है, चाहे वो तन का दुख है, चाहे वो जन का दुख है, चाहे वो धन का है, जरूर किसी न किसी कर्म का ये फल मुझे मिल रहा है। और यदि मैं अपने कर्मों को वर्तमान समय भगवान की आज्ञा अनुसार विकारों से मुक्त होकर के हम श्रेष्ठ कर्म करें तो सिद्ध है जैसा कर्म वैसा फल, अर्थात मेरा भविष्य जो है वो जरूर उज्जवल होगा, श्रेष्ठ होगा, महान होगा। फिर ये क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा कि पता नहीं मेरा दूसरा जन्म क्या होगा। इसीलिए यहाँ परमात्मा पिता हमें जीवन का लक्ष्य देते हैं कि बच्चे, जीवन का लक्ष्य केवल इतना ही नहीं कि पढ़ाई की, नौकरी कर ली, परिवार बसा लिया, बैंक बैलेंस रख लिया, हो गया जीवन। यही जीवन नहीं है। जीवन का लक्ष्य क्या है? जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो भी मेरी ये यात्रा चलती रहेगी, तो मेरा भविष्य जीवन में क्या होगा वो हम कभी सोचते नहीं है। हम सभी को पता है कि हमको भगवान ने रिटर्न टिकट दी हुई है। मिली है सभी को? यहां कोई ऐसा बैठा है कि जो कहे बहन जी हमारे हाथ में रिटर्न टिकट नहीं है? उसके ऊपर डेट, दिन और समय लिखा हुआ है, परंतु हम पढ़ नहीं सकते। लेकिन इतना अवश्य है हमारे पास रिटर्न टिकट है, यात्रा चलने वाली है, लेकिन हम उसके बारे में कभी सोचते नहीं है। इसीलिए परमात्मा पिता हमें अब जीवन का लक्ष्य दे रहे हैं, नर करनी ऐसी करे जो नर का नारायण बन जाए, नारी कर्म ऐसे करे जो नारी से श्री लक्ष्मी बन जाए। हम लक्ष्मी और नारायण जैसे अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता हमारे जैसे ही तो मनुष्य थे। आज हमारा नाम होगा परंतु हमें कोई नमस्कार नहीं करता है। घर में हम बच्चे का नाम श्री कृष्ण रखते हैं, परंतु घर में श्री कृष्ण की मूर्ति रखकर पूजा करते, अपने बेटे की हम पूजा नहीं करते हैं। अगर वो बच्चा थोड़ा भी नटखटपन दिखाता है तो माँ उस पर फूल नहीं चढ़ाती है, परंतु हाथ को शस्त्र बनाकर उसे थप्पड़ लगा देती। ऐसा क्यों है? ना वो श्री कृष्ण। हमारा भी नाम राम होगा, पर मुझे मेरी पत्नी नहीं मानती होगी कि आप राम हो। क्यों? क्या अंतर है? कर्म हमारे ऐसे नहीं है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आज हमारे जीवन में वो मर्यादा कहाँ? इसीलिए कभी कभी इस भारत को देखते हुए बड़ा दुख होता है कि क्या हमारे इस भारत भूमि की दुर्दशा हुई, जो मनुष्यों ने मर्यादाओं को लांग दिया, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का देश था, उस देश में आज एड्स जैसी बीमारी हो चुकी है, और वो भी भारत कोई कम नहीं। कहते हैं तीसरे नंबर पर आज भारत जो है एड्स की बीमारी में आगे बढ़ रहा है। क्यों? कर्मों पर हमारा ध्यान नहीं है। इसीलिए केवल नाम रखने से काम नहीं बनेगा, नाम रखने से कोई देवता नहीं बनते हैं, वैसे हमारे कर्म चाहिए। आज हम मूर्ति की पूजा कर रहे हैं पर चैतन्य को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो कर्मों में हमें नजर नहीं आता। इसीलिए परमात्मा पिता हमें ये जीवन का लक्ष्य देते हैं कि बच्चे ऐसे कर्म करो भगवान की आज्ञा अनुसार जो आप श्री लक्ष्मी श्री नारायण के समान बन जाएंगे। तो वास्तव में जिन देवी और देवताओं का हम गायन और पूजन करते हैं, वो देवी देवता कौन थे? वो और कोई नहीं थे, हम ही मनुष्यात्माएं थे। लेकिन हम अपने आप को पूर्णतः भूल चुके हैं, इसीलिए हम मंदिरों में केवल मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं, पर हम ये नहीं जानते कि हम ही ऐसे थे। अब भगवान ये स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। तो अब हमें ये जीवन का लक्ष्य पक्का करना है कि हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाकर मनुष्य से देवता बनेंगे ही, क्योंकि भगवान कहते हैं आप स्वयं अपने भाग्य के विधाता हो। भगवान ने हम सभी के हाथों में कर्मों की कलम पकड़ा दी है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, ये तराजू भी भगवान ने दिया है। अब उस आधार से हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। अब हम देखेंगे कि मनुष्य आत्मा जो है सृष्टि चक्र में 5000 वर्ष में कितने जन्म लेते हैं। यहाँ चित्र में दर्शाया है कि ये सृष्टि का चक्र है जिसमें 4 युग दर्शाए हुए हैं। अब 4 युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और पुरुषोत्तम संगम युग है। अब आप बाजू के चित्र में देखेंगे मनुष्य आत्माओं के 84 जन्म की कहानी बताई है। एक कल्प कंप्लीट होने में 5000 वर्ष लगते हैं, जिसे ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कही जाती है। जब इस सृष्टि पर सतयुग और त्रेतायुग था तो उसे ब्रह्मा का दिन कहा गया, उसे स्वर्ग कहा गया, राम राज्य कहा गया। जब द्वापर और कलयुग आया तो इसे ब्रह्मा की रात, नर्क या फिर कहेंगे कि कुंभी पाक नर्क कहा गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब इस भारत भूमि में सतयुग था, देवी देवताओं का राज्य था जिसे राम राज्य कहा गया, इस सतयुग में 1250 वर्ष की आयु में मनुष्य आत्मा जो है वो 8 जन्म लेती है। जन्म 8 है, आयु बहुत बड़ी होती है। देवताओं की आयु 150 वर्ष कहलाई जाती है। जहां पर किसी भी प्रकार का दुख नहीं और विकारों का नामो निशान भी नहीं, इसीलिए देवी देवताओं के जीवन की महिमा में गायन किया जाता है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तो जब सतयुग और त्रेतायुग था, जहां एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी, इसीलिए उसे राम राज्य या स्वर्ग कहा गया। तब बापूजी कहा करते थे, मुझे भारत को फिर से राम राज्य बनाना है। तो फिर से का मतलब क्या हुआ? पहले था, अब नहीं है, अब उसे बनाना है। इसीलिए आदरणीय उषा बहन जी ने उस दिन में अपने उस दिन भाषण में कहा कि बापूजी का सपना बेहद के बापूजी निराकार शिव परमात्मा पूर्ण करने जा रहे हैं। भगवान पुनः इस भारत को स्वर्ग या राम राज्य बना रहे, परंतु किसके द्वारा? हम सभी आत्माओं के द्वारा। हम आत्माओं का भगवान परिवर्तन कराने आए हैं, नहीं तो भगवान के आने का मतलब क्या? ऐसे तो कितने संत आए, महात्माएं आए, ऋषि मुनि आए, परंतु हम सभी ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। उन्होंने जो शिक्षाएं दी उसे हमने नहीं माना, इसीलिए भगवान को धरा पर आना पड़ा। मैसेंजर पैगंबर आते आते भगवान ने देखा सृष्टि जो है वो तो और बिगड़ती जा रही, और हम ही भगवान को पुकारने लगे, हे भगवान अब ये बिगड़ी को बनाने के लिए आओ। हे पतित पावन परम पिता परमात्मा, आप इस सृष्टि को पावन बनाने आओ। तो भगवान स्वयं आकर के हम आत्माओं को पावन बना रहे, अर्थात मनुष्य को देवता बना रहे हैं। तो सतयुग में जो देवी देवताएं थे उनका संपूर्ण जीवन सत्व प्रधान था, इसीलिए कहेंगे आत्मा की स्थिति जो है वो सत्व प्रधान थी। 100% जो मूल्य है वो देवताओं के जीवन में थे, चाहे सहनशीलता, मधुरता, धैर्यता, नम्रता, गंभीरता, ये सर्व गुण जो गाए जाते हैं वे देवताओं के जीवन में 100% थे। हमारे जीवन में भी है, परंतु परसेंटेज क्या है हम स्वयं को जान सकते हैं, जीरो नहीं कहेंगे, है कुछ परसेंटेज, परंतु देवताओं के समान नहीं है, इसीलिए उन्हें देवता कहा गया। इसीलिए वो दुनिया सुखधाम कहलाई गई, आत्मा सतो प्रधान थी। तब सतयुग को सोने की दुनिया कहाँ गया। इसीलिए गायन हुआ, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वह भारत देश है मेरा। सचमुच हमारा भारत ऐसा था, इसीलिए आज भी हम गायन करते हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती। इस तरह हमारा भारत महान कहलाया जाता था। तो सतयुग और त्रेता में, सतयुग में आत्मा का जो वर्ण है वो देवता वर्ण था। सोने की दुनिया थी, 8 जन्म लिए, आयु 150 वर्ष की थी। अब सतयुग बीतता है, त्रेता युग आता है। त्रेता युग में आत्मा के जो जन्म है वो 8 से 12 हो जाते हैं। जन्म बढ़ जाते हैं, आयु कम होने लगती है। अब देखिए, जो सुख सतयुग में था वही सुख त्रेता में भी था, पर धीरे धीरे आत्मा की उतरती कला होने लगी। 16 कला संपन्न आत्माएं अब 14 कला संपन्न बनी। आत्मा की स्थिति सतो प्रधान से सतो सामान्य हो गई और त्रेता को चांदी का युग कहा गया। त्रेता में वर्ण बदल गया, जो सतयुग स्वर्ण दुनिया थी वो चांदी की हुई और वर्ण बदल गया, अब देवता से क्षत्रिय कहलाने लगे। सुख तो वही था, सुख में कोई कमी नहीं थी, पर मनुष्य आत्माओं की संख्या जो है वो अब बढ़ चुकी थी। तो त्रेता के अंत तक 33 करोड़ देवी देवताओं का इस भारत भूमि पर राज्य था। इसीलिए आज दिन तक भी हम लोग पूजन केवल कुछ एक देवताओं का करेंगे, लेकिन जब नमन करते हैं तो यही कहते हैं 33 करोड़ कोटि देवताओं को हमारा प्रणाम है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि सतयुग त्रेता में बहुत सुख था। एक धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म था, एक राज्य था सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य और त्रेता में श्री राम का राज्य। भाषा भी वहां पर एक ही थी, जिसे देवनागरी हिंदी भाषा कहा जाता, वह भाषा चलती थी। अब देखिए, सतयुग त्रेता बीत गया, द्वापर युग आया। द्वापर शब्द का अर्थ है जहां द्वैत निर्माण होता है, धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों अलग हो जाती है। सतयुग त्रेता की विशेषता है कि जहां धर्म सत्ता और राज्य सत्ता राजा के हाथ में होती है, पर द्वापर युग से राज्य सत्ता अलग और धर्म सत्ता अलग हो जाती, और आत्मा जन्म मरण के चक्र में आते आते अब आत्मा को शरीर की आसक्ति होने लगती है। पवित्रता की परसेंटेज जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और आसक्ति शरीर के होने के कारण अब धीरे धीरे आत्मा में 5 विकारों की प्रवेशता होने लगती है। यही द्वापर युग से आत्मा का पतित बनना आरंभ हो जाता और आत्मा के दिव्य गुणों का हरण होने लगता है। इसीलिए हम सभी ने सुना है कि रामायण में कहते हैं, रावण ने सीता का हरण कर लिया। सीता का एक सीता की बात नहीं, भाइयों और बहनों, हम सब आत्मा रूपी सीताएं हैं। सीता शब्द का अर्थ है जो पवित्रता की देवी थी। हम स्वयं ऐसे पवित्र आत्माएं थी, पर जैसे ही द्वापर आया, विकारों की प्रवेशता होने के कारण पवित्रता की परसेंटेज जो है वो धीरे धीरे कम होने लगी, और द्वापर युग से रावण का राज्य आरंभ हो गया। अब हम सब क्या करते हैं, जब दशहरा आता है तो दशहरे के दिन हम रावण का बहुत बड़ा पुतला बनाकर रावण को जलाते हैं। क्या करते, रावण को हर वर्ष जलाते हैं। सोचने की बात है, अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हर साल हम उसे याद कर उसका फोटो रखते और उसको माला पहनाते हैं, उसके नाम का श्राद्ध खिलाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन हो, उसका कभी हर वर्ष पुतला जलाया हो? नहीं। पर हम ये बात जरूर देखते हैं कि कहां कंपनी में ऐसे होता है, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में कुछ तनाव होता है, उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है, तो जो कोई मैनेजर या कंपनी का मालिक होता है उसके नाम का पुतला बना करके उसे जलाया जाता है। पर जिंदे व्यक्ति का पुतला बनाकर जलाते हैं। फिर हम रावण का जो हर वर्ष पुतला जलाते हैं, इससे सिद्ध होता है रावण मरा हुआ नहीं है। तभी तो हम उसका पुतला जलाते हैं। हम उसका केवल इंसल्ट करते हैं, पर रावण है कौन और रावण रहता कहाँ है? क्या रावण लंका में रहता है? कहाँ रहता हाँ? और कहाँ है रावण? हमारे साथ रहता है हाँ? इसीलिए पहले ही आपको हम बता चुके, रावण कह रहा है ना मेरा कोई ताज है ना मेरा कोई तख्त है, फिर भी इस दुनिया में एक एक व्यक्ति के दिल पर रावण का राज है। रावण हमारे अंदर ही बैठा है। पुतला जलाने से क्या होगा? पुतला जलाने से कोई रावण राज्य नष्ट हो जाएगा? नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं दशहरा, दस शीश रावण को दिखाते हैं। पांच विकार स्त्री में भी है तो पांच विकार पुरुष में भी है, इसीलिए रावण को दस शीश दिखाते हैं। ऐसे किसी व्यक्ति को दस शीश नहीं होते हैं। परंतु एक बात जरूर कही जाती है कि कहीं लोगों में बात बदलने की आदत होती है, तो कहां जाता भाई साहब, इसे संभाल करके बात करना, क्योंकि आप ये कहेंगे और ये जाकर के उसका दूसरा अर्थ कह देगा, तो कहते ये व्यक्ति है ना, ये दो मुख वाला है, दूतोंडी है, दो उसको मुख है। अब मुख दो है क्या? एक ही मुख है, पर एक मुख से वो व्यक्ति बात करता है तो एक बात का दूसरा अर्थ करके दूसरे ढंग से सुनाता, तीसरे को तीसरे ढंग से सुनाता। इस तरह से देखिए हम मनुष्य की भी वही स्थिति है, कभी काम के वश कर्म, कभी क्रोध के वश कर्म, कभी लोभ के वश कर्म, कभी अहंकार के वश कर्म, कभी मोह के वश। इस तरह से हमें ही पांच शीश लग जाते। इसीलिए रावण और कहीं नहीं है, वो हमारे भीतर बैठा है। इसीलिए हम कहीं बार कहते हैं, क्या करे बहन जी, मुझे गुस्सा नहीं करना था परंतु आ गया। आ गया अर्थात कहां से आया? इष्ट से, वैश्य से, ऊपर से, कहां से आया? अंदर ही क्रोध है, तभी तो बाहर आया। ऐसा नहीं आता है, पर कभी कोई उल्टा कर्म कर लेता है, कहना नहीं मानता है, तभी वो आ जाता। अंदर बैठा है तभी तो आता। इसीलिए परमात्मा पिता कहती है कि बच्चे यह सृष्टि नर्क बनी ऐसी है। जब मनुष्य के कर्मों में परिवर्तन आया, वही मनुष्य है जो सतयुग त्रेता में थे और आज भी हम ही मनुष्य है, लेकिन हमारे कर्म जो है वो विकारी बन गए। इसीलिए आत्मा की स्थिति जो है वो रज्जो प्रधान कहलाई गई। अब जन्म बढ़ गए, जन्म ज्यादा तो आयु कम हो गई। द्वापर युग में 21 जन्म कहलाए जाते हैं और इसी द्वापर युग से भक्ति करना भी हम आरंभ कर देते हैं, क्योंकि गायन है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन सब करे तो दुख काय को होए। सतयुग त्रेता में हम बड़े आराम से रहते थे, सुख सुविधाओं से संपन्न जीवन थी, भगवान की याद भी कभी नहीं की। लेकिन जैसे ही द्वापर युग आया, दुख शुरू हुआ, भक्ति का हमने आरंभ कर दिया। अब इस द्वापर युग में हम आत्मा जो है रज्जु प्रधान बनी और वर्ण जो है वो जैसे सतयुग में देवता थे, त्रेता में क्षत्रिय बने, द्वापर में वैश्य बन गए, कर्म कांड करने लगे। अब इस द्वापर युग को तांबे का युग कहलाया गया, कॉपर एज, कहां गोल्डन एज, सिल्वर एज, फिर कॉपर एज। अब इसके बाद द्वापर युग के बाद कलयुग आया। कलयुग की महिमा क्या करें, वो तो आप सब जानते ही है। कलयुग का अर्थ है ही कलाहीन, पापाचारी, भ्रष्टाचारी दुनिया, जहां मनुष्य आत्माओं में पांच विकार फुल फोर्स में है। छोटे बच्चे से लेकर वह वृद्ध व्यक्ति तक विकारों का राज चल रहा है। इसीलिए इस कलयुगी दुनिया को ये भी नाम दिया गया रव रव नर्क, कुंभी पाक नर्क। ऐसे ऐसे मनुष्य कर्म कर रहे हैं जो मनुष्य को शोभा नहीं देते, जो जानवर करते हैं। इसीलिए आज के मनुष्य को देखते हुए कहा कि मनुष्य का जीवन जो है वो जानवर से भी बदतर बन चुका है। मनुष्य अपने कर्मों को भूला हुआ है, अपने आप को भूला हुआ है। इसीलिए इस कलयुगी दुनिया की निशानियां बताई जाती। पर अब कलयुग की शुरुआत नहीं, अब तो कलयुग के अंत के भी अंत का समय भाइयों और बहनों आकर पहुंचा है। इसकी निशानियां क्या है? कलयुग का अंत का समय चल रहा है। इसकी पहली निशानी है, कहते कन्या अपने मुंह से वर मांगेगी। आज मुंह से वर मांगने की बात तो छोड़ दीजिए, परंतु आज की कन्याएं अपने पवित्र जीवन का महत्व न जानने के कारण स्वयं ही स्वयं वर कर लेती है और मात पिता दुखी होकर ढूंढते रहते हैं, मेरी बेटी कहाँ गई, मेरी बेटी कहाँ गई। और कोर्ट से पेपर आता है, आपकी बेटी तो सौ बन गई। देखिए इस तरह के संसार में आज बातें हो रही है। इसी प्रकार से बताया जाता है पुड़ियों में अन्न बेचा जाएगा। एक जमाना ऐसा था जिसका आज भी हम गायन करते हैं, जब सतयुग त्रेता था तो कहते हैं जहां दूध घी की नदियां बहती थी। और आज के संसार में देखिए पानी की नदी भी बहना मुश्किल हो गई। इसीलिए कहते हैं पुड़ियों में अन्न बेचा जाएगा। आज दूध घी जैसी चीजें और हर प्रकार की चीज किसमें मिल रही है? प्लास्टिक बैग में मिल रही है। इसीलिए ये कलयुग के अंत का समय है। फिर बताया जाता है कि जब कलयुग का अंत होता है तब नारियों ने अपनी मर्यादाओं को लांग दिया होगा, छोड़ दिया होगा। वहां भी आज हम देख रहे हैं, जब से नारी ने सर्विस करना शुरू किया, उसका कदम बाहर चला गया, तब से और भी चरित्र का पतन होने लगा। इसीलिए कलयुग के अंत का ये समय है। तब कहा जाता है कि जब एक बार पांच पांडव भगवान के पास गए और उन्होंने भगवान को कहा कि भगवान आप कहते हो कलयुग के अंत का समय है, उसकी निशानी क्या है? तब भगवान ने पांच पांडवों को कहा कि आप पांच दिशाओं में चले जाओ और कुछ समय बाद लौट करके मेरे पास आ जाओ। तो पांच पांडव पांच दिशाओं में गए और एक एक करके भगवान के पास लौटता हुआ आया। पहला पांडव आया, भगवान ने पूछा बेटा क्या देखकर आए हो दुनिया में? तो कहा भगवान आपको क्या बताए, मैंने एक हाथी देखा, परंतु उस हाथी को दुसुंद थी। भगवान ने कहा ठीक बेटा। दूसरा पांडव आया, भगवान बच्चे क्या आए हो? तो कहा भगवान मैंने संसार तीन कुआ देखी, पहली कुआ तीसरी कुआ को पानी दे रही थी पर अपने पास की जो कुआ सूख रही थी उसको पानी नहीं दे रही थी। भगवान ने कहा ठीक है बच्चे। तीसरा पांडव आए, भगवान ने पूछा बेटे क्या देखकर आए हो संसार में?
नहीं खुद के साथ औरों को भी नीचे ले आ रही थी।